ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच असिक्न्याम् अनुनीतः स्वयंभुवा षष्टीम् संजनयामास दुहित्रिः पितृवत्सलः श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसो सिक्न्याम् अनुनीतः स्वयंभुवा षष्टिम् संजनयामास दुहित्रिः पितृवत्सलः श्रीशुक उवाच ततः प्राचेत श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा ततः इस घटना के बाद प्राचेतसः प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति असिक्न्याम असिक्नी नामक पत्नी से अनुनीतः शांत किए गए स्वयंभुवा श्री ब्रह्मा के द्वारा षष्ठीम साठ संजनया मास उत्पन्न किए दुहित्री ही कन्याएं पितृवत्सला अपने पिता की परम प्यारी अनुवाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन तदनंतर श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रजापति दक्ष ने जिन्हें प्राचेतस कहा जाता है अपनी पत्नी असिक्नी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक प्यार करती थीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अपने अनेक पुत्रों की हानि सह लेने पर दक्ष को नारद मुनि के प्रति की गई अज्ञता का पश्चाताप हुआ तब श्री ब्रह्मा दक्ष के पास गए और उनको संतान उत्पन्न करने के लिए सलाह दी इस बार दक्ष सावधान थे अतः उन्होंने कन्याएं ही उत्पन्न की जिससे नारद उन्हें विरक्त न बना सके स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है उन्हें तो अपने पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए क्योंकि यदि पति मुक्ति का पात्र है तो उसकी पत्नी को स्वयमेव मुक्ति प्राप्त हो जाती है जैसा कि शास्त्रों का कथन है पत्नी अपने पति के पवित्र कार्यों में हिंसा बताने वाली होती है अतः स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की आज्ञाकारिणी बने तभी बिना किसी भिन्न प्रयास के वह अपने पति के लाभ में हिस्सा बांट सकती है इस अध्याय के पूर्व दो अध्यायों में 4 और 5 में यह कथा है कि दक्ष प्रजापति एक बार 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको तपस्या के लिए भेजे। तपस्या करके जीवन में शक्ति पा करके वे गृहस्थ बनेंगे और सृष्टि विस्तार करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे, इस आशा से वे अपने पुत्रों को भेजे थे। परंतु उधर जाने पर श्री नारद मुनि से उनकी भेंट हुई और श्री नारद जी ने उनको 10 बातें बताई। केवल 10 मिनट का ही काम था और उन्हें विरक्त बना दिया, वे घर लौटे ही नहीं। रामायण में लिखा गया है कि दक्ष सुतनी उपदेश नहीं जाई, तिन्हपुनि भवन न देखा आई। नारद जी ऐसे हैं कि दक्ष प्रजापति के पुत्रों को ऐसी पट्टी पढ़ाए कि वे फिर घर लौटे ही नहीं। तिन्हपुनि भवन न देखा आई, घर देखने भी नहीं आए, गृहस्थ बनने की तो बात ही दूर थी, लौटे ही नहीं। दक्ष प्रजापति पुत्रों के इस विनाश को सुने उन्हें बहुत दुख हुआ। जब कोई बेटा ब्रह्मचारी हो जाता है तो माता पिता सोचते हैं कि हमारे लड़के का सर्वनाश हो गया क्योंकि वह संसार का भोग नहीं भोगेगा और अपने माता पिता का पालन भी नहीं करेगा। कई तरह से विचार करते हैं। तो दक्ष प्रजापति भी यही सोच रहे थे कि उनके पुत्रों का नाश कर दिया नारद। तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं बेटा, उसका काम है, वो विरक्त बना रहा है, तुम फिर पुत्र उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष प्रजापति फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। पहले सेट को बहुलाश कहते हैं और दूसरे सेट को सबलाश, उस सेट को 1,000। तो वे उनको भी भेजे कि जाकर के तपस्या करके शक्ति अर्जन करो। गृहस्थ बनने के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन और वेदाध्ययन, शास्त्रों का ये सब करना, इसके लिए भेजा उन्होंने वन में। ऋषि लोग रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, वहां पढ़ो शास्त्र, सीखो, तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसके बाद गृहस्थ बनना। तब ये लोग भी ठीक उसी स्थान पर पहुंच गए जहां नारद जी ने उनके भाइयों का नाश किया था। वहां फिर नारद जी पहुंच गए और कहे कि जो छोटे भाई अपने बड़े भाई का अनुगमन करते हैं वे मरुद लोक में निवास करते हैं, स्वर्ग ऐसे ही मिल जाता है अगर बड़े भाई के अनुसार जीवन बिताया जाए। तो तुम लोगों ने सुना कि तुम्हारे बड़े भाई सब परम विरक्त हो गए और भगवान के धाम में जाने की योग्यता प्राप्त कर ली। इस प्राकृतिक जगत में क्या रहना है, यहां मरना है, इसलिए जो बड़े भाइयों ने किया है वही करना चाहिए और वही 10 बात उनको भी सिखाए। वे सब भी अपने भाइयों के स्नेह में घर नहीं लौटे, वे भी विरक्त हो गए। 11,000 पुत्रों को नारद जी ने इस तरह भगवान में लगाया। वास्तव में श्री नारद जी परम कृपालु हैं। आगे इन जीवों की दुर्दशा होगी घर गृहस्थी में फंस करके, तो उन्होंने सोचा कि ये उचित कैंडिडेट हैं, योग्य पात्र हैं, ये भगवान की भक्ति करेंगे विरक्त रह करके। वास्तव में गृहस्थ उनको बनना चाहिए जो चेतना में अभी बहुत कम हैं, जिन्हें भोगों की रुचि है, रुपया पैसा कमाने की भावना है और कई प्रकार से मेंटेन करने की उनको, लेकिन जिनमें विरक्ति का परमाणु है शुरू से ही उनके लिए जरूरी नहीं है कि वे गृहस्थ बने। जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवान कृष्ण का चरण कमल पाना, यही वास्तविक लक्ष्य। अगर शुरू से ही किसी में विरक्ति है, स्त्री के प्रति रुचि नहीं है, धन आदि के प्रति रुचि नहीं है, भगवान में रुचि है, भगवान की भक्ति में, जप करने में, भगवान की कथाएं सुनने में, शास्त्रों को पढ़ने में, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं कि इस पच्चड़ में पड़े, गृहस्थ बने। तो श्री नारद जी ने जो कुछ किया वास्तव में उनकी पात्रता के अनुसार किया। वे समझ गए कि ये बच्चे होनहार हैं और वास्तव में भगवान का भजन करके दक्ष प्रजापति ने उनको पैदा किया था। बहुत तपस्या किए थे विंध्याचल पर्वत में। हंस गुह्य स्तुति आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां। तो भगवान की भक्ति करने से जो संतान होता है वो वास्तव में भगवत परायण होता है। श्री नारद जी ने देखा कि ये बच्चे पूर्ण परमहंस आश्रम में जाने योग्य हैं, इसलिए उन्होंने उनको उपदेश दिया है। पर दक्ष प्रजापति इतने उन्नत कॉन्शसनेस के नहीं थे, इसलिए वे नहीं समझे नारद जी की बात को, वे बहुत क्रोधित हुए थे। 11,000 पुत्र उत्पन्न किए और उसमें से ये कभी नहीं छोड़ा इसलिए वो समझ गए सर्वनाश किया। तो श्री नारद जी एक बार सोचे कि इस वंश पर भगवान की कृपा है, ध्रुव महाराज का वंश है, तो हमने भी सभी लोगों पर कृपा किया, प्राचीन बरही पर कृपा किया, प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए प्रचेता, उन पर भी कृपा किया, तब उस भक्त के वंश में दक्ष प्रजापति भी हैं, इनके पुत्रों को पर भी कृपा हुई, इनके पुत्रों को परमहंस आश्रम में दाखिल करा दिया, तो उनको भजन के योग्य बनाया। क्यों नहीं दक्ष प्रजापति को भी कुछ सिखाऊं कि भगवान का भजन कीजिए, अब इस घर गृहस्थी बहुत दिन कर लिए। तभी गए एक दिन दक्ष प्रजापति के पास कृपा करके, उनको देखते ही दक्ष प्रजापति कहे, आ गया फिर, कौन सा मुंह दिखाया मुझको, हमारे पुत्रों को तुमने भिखमंगा का मार्ग दिखाया, छी छी, साधु माने भीख मांगकर खाने वाला, कहां राजा का पुत्र और कहां भीख मांगना, तुमको शर्म नहीं आई यहां आने में, जो किया सो किया, मैं तो सह गया था ना, फिर भी तुम मुझको मुंह दिखाए, तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, अगर कोई बेटा होता ना तब तुमको पता चलता, कुछ है नहीं बाण बहंगवा, आगे पीछे कुछ नहीं है, बस वीणा बजाते हुए घूमते रहते, कभी तुम्हारे हृदय में कोई दया नहीं है, उन बच्चों को भिखमंगा बनाया, गृहस्थ बनने से मना किया, तुम अपने समान सबको करना चाहते हो ना, तुम्हारे ही समान सब बिना घर द्वार के बिना बाल बच्चा के ऐसे ही घूमते रहे, यही चाहते हो ना, ठीक है जो तुमको करना था किए, तुम यहां क्यों आए, किस लिए आए, तुमको मैं साफ देता हूं कि तुम कहीं भी एक जगह बहुत देर तक मत रहो, देर तक रहोगे प्रवचन करोगे सप्ताह करोगे लोगों की मति भ्रमित करोगे, बहुत दिन तक ना रहो, ये साफ दिन तुम ऐसे ही ठोकर खाते रहो, कोई तुम्हारा घर नहीं हो, कुछ नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। तो श्री नारद जी के लिए तो ये साफ और वरदान हुआ। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं एक जगह चाहता हूं कि बहुत दिन रहूं, श्रीमद् भागवतम पूरा करूं, लिखूं और भक्तों को भगवान की बातें सुनाऊं, लेकिन मैं नारद जी की परंपरा में हूं, इसलिए दक्ष प्रजापति का साप हम तक आ रहा है, हम भी एक जगह नहीं रह सकते, कभी लॉस एंजेलिस तो कभी न्यूयॉर्क, कभी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मेलबोर्न, फिर बम्बई, दिल्ली, हमेशा घूमते ही रहते थे, कभी लंदन, कभी एक दिन दो दिन तीन दिन रहे, घूमते रहते थे घूमते रहते। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि दक्ष प्रजापति का साप हमको भी टच कर रहा है, क्योंकि मैं उसी परंपरा में हूं और अनेक लोगों के लड़कों को इस तरह से नारद जी जैसे नाश किया। प्रभुपाद जी कहते थे तो हम पर साप लग रहा है। तो श्री नारद जी के लिए वो साप वरदान हुआ, परंतु दक्ष प्रजापति उसी समय से नारद जी के प्रति बहुत मन में दुर्भाव रखे थे और अब वे संतान उत्पन्न करने से बाज आए, हो गया, वो मानेगा नहीं। अगर मान लीजिए फिर 500 या 100 पुत्र पैदा करता हूं तो फिर वही वो काम करेगा। तो ब्रह्मा जी आए, इसमें लिखा गया अनुनीतः स्वयंभुआ, स्वयंभू अर्थात भगवान ब्रह्मा जी आए दक्ष प्रजापति के पास, बहुत समझाए, अनुनीत अनुनय किए। ब्रह्मा जी को ये चिंता रहती है कि ये सृष्टि होनी चाहिए, ब्रह्मांड पूरा खाली था, सृष्टि होनी चाहिए, संतान उत्पन्न होना चाहिए, बहुत विस्तार होना चाहिए। तो स्वयंभू ने जब अनुनय किया, समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम संतान उत्पन्न करो, अपना जो काम है स्वधर्म है वो करना चाहिए, नारद का यही काम ही है, उसको करने दो अपना काम, तो यही करे, हमेशा मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा, हमारे पुत्रों को बर्बाद करता रहेगा। दक्ष प्रजापति ने इस तरह कहा, नहीं अब हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं बेटा तुम पुत्र उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम केवल पुत्रियां उत्पन्न करो, पुत्रियों को तो विरक्त बनाएगा नहीं, स्त्रियों से तो बात भी नहीं करता है नारद। तो इस बात से दक्ष प्रजापति को आश्वासन हुआ, आश्वासन मिला है। ठीक, तब उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया, संतान उत्पन्न करने की शक्ति थी उनमें, भगवान ने विशेषता दी थी, संतान उत्पन्न करना गृहस्थों का कर्तव्य है, जिसको जितना ही संतान हो उतना ही अच्छा माना जाता है हमारे वैदिक संस्कृति में। तो दक्ष प्रजापति को स्पेशल भगवान की शक्ति मिली थी, उन्होंने डायरेक्ट दक्ष प्रजापति से कहा था दर्शन देकर के, तुम प्रजा की सृष्टि करो, ये भगवान का आदेश था। तो दक्ष प्रजापति 60 कन्याओं को जन्म दिए अपनी पत्नी अशिकनी के गर्भ से। जब ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति, तो उस समय इनकी पत्नी का नाम था प्रसूति। प्रसूति कर्दम जी की पुत्री थी, आकुति देवहूति प्रसूति तीन पुत्रियां थीं। तो आकुति का विवाह किस प्रजापति से हुआ था? रुचि प्रजापति से हुआ था, और देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ था, और प्रसूति का विवाह प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। तो उस दक्ष से, प्रसूति के गर्भ से दक्ष द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ था, सती नामक कन्या, सती, लेकिन वो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के शरीर छोड़ दी, अपने पिता पर लंज होकर के। दक्ष प्रजापति ने सती का स्वागत नहीं किया तो वो शरीर छोड़ दी। जब शिव जी के प्रति दक्ष प्रजापति ने इस तरह द्रोह किया तो भगवान शिव ने इनका मस्तक काट दिया था, बकरा का मस्तक लगाया था। जहां भी दक्ष प्रजापति जाते थे तो लोग यही कहानी कहने लगते थे, जानते हो बकरा का सिर क्यों लगा है, ये इतना शिव का द्रोही है कि शिव जी ने इसका मस्तक काट दिया। और इसके बाद बकरा का मस्तक जोड़ा गया है। दक्ष प्रजापति इस बात से बहुत चिंतित होते थे, बहुत बदनामी होती थी, इसीलिए वे अपना शरीर छोड़ दिए और शरीर छोड़ करके प्रचेताओं के यहां जन्म लिए। दस भाई थे प्रचेता, जो प्राचीन बरही के पुत्र थे, तो दस भाइयों के एक पुत्र हुए। दसों एक समान थे बिल्कुल, भाषा रूप शरीर स्वभाव सब कुछ, और नाम भी प्रचेता था। बस प्रचेता का अर्थ होता है प्रकृष्ट चेतना वाला, कृष्ण कॉन्शियसनेस वाला। वे दसों भगवान के परम भक्त थे, उनको भी नारद जी ने सिखाया तो बहुत काल तक वे घर नहीं लौटे। प्रचेता प्राचीन भर ही राज्य से रिटायर हो गए, लेकिन उस समय भी नहीं आए थे। बाद में इन्होंने एक पत्नी स्वीकार किया और उस पत्नी से एक ही पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दक्ष। तो ये दक्ष है प्रचेताओं के पुत्र है, इसीलिए प्राचेतसह लिखा गया, प्रचेताओं के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र नहीं। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन कन्याओं के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पितृ वत्सला। अपने पिता से, दक्ष प्रजापति से ये बच्चियां बहुत स्नेह करती थी, बहुत श्रद्धा थी उनके अपने पिता के प्रति। ये देखा गया है कि यदि कोई कन्या है अपने पिता की, ये दो तीन चार कन्याएं हैं, कोई बेटा नहीं है, तो पिता भी उन कन्याओं से बहुत अधिक स्नेह करता है और कन्याएं भी अपने पिता को बहुत मानती है। जब पुत्र होता है तो माता पिता का कुछ स्नेह उसके तरफ बढ़ जाता है, ज्यादा होता है, कन्याओं पर कम ध्यान रहता है। लेकिन ये केवल कन्याएं रह गई और 11,000 भाई हुए थे, वे तो सब विरक्त हो गए, मतलब एक प्रकार से समाप्त ही हो गए थे। अब घर आना नहीं, कुछ नहीं करना, तो अब तो अपने पिता के लिए यही पुत्र थी, कन्याएं ही, तो बहुत स्नेह करते थे। पितृ वत्सला इसके दोनों अर्थ हैं। वे पिता इनसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत इनके प्रति वत्सल थे, और कन्याएं भी अपने पिता के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी, बहुत स्नेह करती थी। ये है पिता और पुत्रियों का संबंध, पितृ वत्सला। पिता का उन्हें बहुत स्नेह प्राप्त था और वे अपने पिता को बहुत मानती थीं। श्रीमद् भागवतम में केवल यही बात नहीं बताई गई है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परिवार के साथ स्वजनों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ये भी बीच बीच में शिक्षा दी गई है। ये बच्चियां अपने पिता से बहुत स्नेह करती थीं, उनकी बहुत सेवा करती थी हमेशा। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि पुत्र की अपेक्षा पुत्रियां अधिक सेवा करती हैं माता पिता की। प्राय हम लोग देखते हैं गांवों में अपने माता की सेवा पुत्री बहुत करती है और माता के काम धंधा में हाथ बटाती है, जैसे भोजन बनाना है। बेटा तो कभी मां की सहायता नहीं करता है भोजन बनाने में, है कि नहीं? हां, टाइम से खा लेता है भोजन बनने पर, और मां की सेवा थोड़े करता है। लेकिन बेटी शुरू से ही पानी भरना देना, और यदि घर में गाय है तो गोबर को ले जाना बाहर, कंडा बनाना पाथना, सारी सेवा करती रहती है। मां बीमार हो जाए तो उसकी सेवा करती है, मसाज करती है, तेल लगाती है, कई कई बच्चियों को हमने देखा है स्कूल से आकर के माता की सेवा करने लगते, माता को जो काम दिया गया है, जो काम रहता है, उस काम में हाथ बटाती है। लेकिन लड़के कुछ काम करते होंगे ये तो शायद ही कोई एकाध श्रवण कुमार होंगे, नहीं तो बाकी सब लोफर ही होते हैं, देखा गया। और माता पिता के धन का अधिकारी कौन होगा, यही बेटर नामक जो जीव जन्म लिया है वो अधिकारी, अपने आप उत्तराधिकारी। बेटी तो कुछ लेती भी नहीं है, वो स्वाभाविक व्यवस्था है, अपने पिता से नहीं लेती है, पिता स्नेह से दहेज के रूप में जो भी दे देते हैं वो ले लेती है, क्योंकि उसका वास्तविक हक अपने पति में होता है। ये साइंटिफिक व्यवस्था है। आज के युग में लोग लड़कियों को भड़काते हैं, तुम अपने पिता की संतान हो इसलिए तुम भी अपना हिस्सा मांगो, अपना हिस्सा मांगो, हाँ पिता से भी लो और पति से भी लो। ये कितनी ही गड़बड़ी है, पति में ही उसका हक होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में यह बताते हैं कि दक्ष प्रजापति कन्याएं क्यों उत्पन्न किए, पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न किए, कि नारद फिर इनको विरक्त नहीं बना पाएगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए विरक्ति नहीं बनी है, स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है। प्रभुपाद जी कहते हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने पति की आज्ञाकारिणी रहें, घर में रहे, पति की सेवा करें। यह हमारा वैदिक शास्त्र कहता है। इस संसार में सुख का एक यह भी आधार है, पति पत्नी में प्रेम हो, तो पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे और अपने परिवार की सेवा करे। वह विरक्ति न स्वीकार करें। ऐसा नहीं पति यहां घर पर हैं, बच्चे हैं और वो निकल गए तीर्थ करने, तो वृंदावन में घूम रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी का एक कर्तव्य है कि पति की सेवा करे, और यदि पति मुक्ति का पात्र है, वास्तव में भक्त है, तब तो कहना ही क्या। तो पत्नी सेवा करे पति की तो अपने आप वो मुक्त होगी, भगवान के धाम में जाएगी, ऐसा शास्त्रों का कथन है और श्रील प्रभुपाद जी भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो स्त्रियों के लिए विरक्ति नहीं बनी है, वैराग नहीं बना है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उनका कर्तव्य है, अपना कर्तव्य वो देखना चाहिए, अपना कर्तव्य है पति का अनुयायी रहना, पति की सेवा करना, और किसी भी स्थिति में पति की उपेक्षा नहीं करना, चाहे जैसा भी हो पति। शास्त्र पे भी कहता है कि यदि वो रोगी है या वृद्ध है या जड़ है, ना समझ है, बहुत विद्या बहुत नहीं जानता है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, कई चीज नहीं जानता है, जड़ है, फिर भी पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई स्त्री अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही मालिक हूं और पति को अपनी इच्छा के अनुसार चलावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पति मान लीजिए बेवकूफ है, जड़ है, तो पति से वैसे ही स्नेह करना चाहिए जैसे मां अपने मूर्ख पुत्र से स्नेह करती है, उसका ध्यान रखती है, पालन पोषण करती है। तो किसी भी स्थिति में पति का त्याग नहीं करना चाहिए। यह बात अन्यत्र कही गई है कि पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी से स्नेह करे, उसका भरण पोषण करे, उसको कपड़ा दे, प्यार का वचन दे, वाणी अच्छी बोले और उसको घर दे, संतान दे, गहना दे, और उसको रखने के लिए कुछ पैसा देना चाहिए। स्त्री का स्वभाव होता है वो रखे रहती है, वो संचय करने में दिलचस्प रहती है, आखिर वो काम आएगा पति के चाहे पुत्रों के, लेकिन उसको रखने के लिए देना चाहिए कि ठीक है तुम रखो, ये चाबी उसी के हाथ में रहे, वो इस बात से संतुष्ट होती है क्योंकि एक जगह छोड़ करके आई है, अपने माता पिता का घर छोड़ करके आई है, तो यहां पति के पास आकर के उसे कुछ तो मलकियत देनी चाहिए, स्वामिनी बनाना चाहिए उसे। पर ऐसा नहीं कि पूरा फ्री हो जाए और जहां तहां घूमे खर्च करे, इसके लिए नहीं, पुत्रों के लिए और पति के लिए वो पैसा रखना पसंद करती है। कुछ व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, तो स्त्रियों का यह स्वभाव है, भले पहने या न पहने लेकिन वो कई साड़ी रखना चाहती हैं, कभी एक दिन भी पहनेगी ना किसी पर्व पर किसी फेस्टिवल में तो रखे रहती हैं। तो इस तरह से पति के द्वारा उनको सम्मान मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, और कभी भी धमकी नहीं देनी चाहिए कि तुम्हारी जो इच्छा हो चली जाओ, मैं नहीं चाहता हूं, इस तरह के शैतानी नहीं करनी चाहिए कभी भूल करके, ये पति का कर्तव्य है क्योंकि वो अपने माता पिता को छोड़ करके आई है, अपने भाई को छोड़ करके एक प्रकार से आई है। छोड़ना इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर वो पति के साथ रहती है तो छोड़ ही चुकी है, तो जो एक परिवार को छोड़कर के दूसरे परिवार में आई है तो उसको उचित आदर स्नेह और वस्तुएं देना चाहिए, तब वो संतुष्ट रहेगी। इस तरह से संतुष्ट रह करके पत्नी को चाहिए कि वो पति को ही अपना इष्ट देव समझे, पति की सेवा करे, उनसे बहुत मधुर वचन बोले, कभी कठोर न बोले, सेवा करे, और उनसे भिन्न तीर्थाटन या कोई समाज हो, सामाजिक उत्सव सोशल फंक्शन हो, उसमें न जाए। आज का युग तो बदल गया, कुछ युग के अनुसार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। वैदिक स्टाइल है, ठीक है, उसको आपद धर्म कहते हैं, सेट करे, लेकिन मेन उद्देश्य रहे पति की सेवा। जैसे आज के युग में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की है तो उसे भी जॉब करना चाहिए, उसे भी काम करना चाहिए परिवार चलाने के लिए। ऐसी दुर्व्यवस्था है आज के युग में कि यदि वह पत्नी काम नहीं करेगी तो परिवार ठीक से नहीं चल पाएगा, भरण पोषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनेक खर्चा बढ़ गया है, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। इस स्थिति में अगर लड़की घर में ही रहती है, कोई काम नहीं करती है, मतलब पत्नी काम नहीं करती है, तो बहुत अड़चन पैदा होती है, कैसे घर चलेगा। यदि पति समर्थ है, अर्जन कर रहा है काम भर ठीक से, तब तो काम करने कोई जरूरत नहीं है, घर में ही इतना काम होता है कि उसी को करे। लेकिन कदाचित लड़की पढ़ी लिखी है और पोषण अच्छा से नहीं हो पा रहा है तो वो काम कर सकती है, पूर्ण अपने सती धर्म में रहते हुए ही कर सकती है काम, इसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। तो यहां ये बात ये कही गई है कि बच्चियां अपने पिता से बहुत स्नेह करती थी, यह है प्रीति का संबंध। कभी उन बच्चियों ने मांग नहीं किया कि 11,000 हमारे भाई होते तो उनको आप हिस्सा देते कि नहीं, तो हमको भी दीजिए, ऐसा उनमें से एक भी ने नहीं कहा। इनकी पुत्रियों में परम महान पुत्रियां जैसे अदिति दीति, इनका नाम आएगा बाद में, 60 में से वो भी हैं, माता अदिति जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया, और अनेक जीवों को जन्म दिया, दीति भी इन्हीं की पुत्री है, बहुत स्नेह करती थी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में यह बात भी सिखाई गई है कि परिवार के साथ बहुत स्नेह करना चाहिए, अपने अपने पोजीशन में रह करके एक दूसरे से प्रेम करें, खास करके पत्नी। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति से प्रेम करें, नहीं तो परिवार नरक हो जाता है। आज के युग में हम सुनते हैं, बारंबार बात सुनने को मिलती है अंग्रेजी शब्द की, उनका तो डिवोर्स हो गया। फार्म भरने के लिए कहीं कहीं देते हैं तो लिखते हैं कि मैरिड, वीडो, डिवोर्स्ड, आपको लाइन खींचना पड़ता है वहां पर। ये वाक्य कैसे चलने लगा, ये डिवोर्स्ड, ये हम लोगों का वैदिक शब्द नहीं है, ये राक्षसों का है वास्तव में, पश्चात देश के राक्षसों का, या मलेच्छों का, यवनों का। ये तलाक और डिवोर्स ये सब शब्द हम लोगों के नहीं है, शब्द इसलिए नहीं है कि हम लोगों में ऐसा कभी होता नहीं था, कोई पत्नी का त्याग कर दे या कोई पत्नी अपने पति का त्याग कर दे, कभी नहीं होता था। तो हमेशा सेवा करनी चाहिए। जो शिक्षा में स्त्रियों को ही शिक्षा दी जाती है, जैसे प्रभुपाद जी के बारे में देखिए, ये लिख रहे हैं कि स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है। जब भी कोई अवसर आता है तो श्रील प्रभुपाद जी स्त्रियों को शिक्षा देते हैं। एक बार हमसे एक व्यक्ति ने पूछा, जब देखिए तब स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है, पुरुषों को कुछ नहीं सिखाया जाता है, ये क्यों? ये स्वाभाविक है, पत्नी को कहा जाता है कि पति से प्रेम करे, पति से प्रेम करे, पति से प्रेम करे, पर पति को क्यों नहीं सिखाया जाता है कि पत्नी से प्रेम करे, प्रेम करे? हमने तो ऐसे उत्तर दिया था कि पत्नी को क्या सिखाने की जरूरत है, पति को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, पति तो अपने आप ही स्त्री का गुलाम रहता है, तो सेवा करता ही रहता है। मैं ऐसे उत्तर दिया था तो कुछ पतियों को रंज नहीं होना चाहिए। है ना, लेकिन जनरल देखा जाता है तो पत्नी से स्नेह करते हैं, स्नेह करते ही हैं, बल्कि उनको विरक्ति सिखाई जाती है कि इतना अटैच मत होइए, थोड़ा हरे कृष्ण भी कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। पत्नी को गृहिणी कहते भी है, वो ग्रहण कर लेती है, पति के कॉन्शियसनेस को सब माया मोह से ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए स्त्रियों को ही शिक्षा दी जाती है कि पति से प्रेम करें, भगवान का भजन करें, लेकिन पति से सेपरेट कोई प्लान न करें, कभी भी नहीं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है। ये तो शास्त्र का वाक्य है ना। अब दक्ष प्रजापति ने 60 पुत्रियां उत्पन्न किया तो अब श्री नारद जी एक बार भी वहां आएंगे नहीं। श्री नारद जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, परमहंस हैं, तो वे स्त्रियों से बात नहीं करते हैं, जो भी सिखाना है, प्रवचन करना है तो पुरुषों से बात करते हैं। ये साधुओं के कुछ ऐसे नियम हैं कि उन्हें स्त्रियों से बात नहीं करना चाहिए, विरक्तों के लिए कही जाती है। तो दक्ष प्रजापति अब आश्वस्त थे कि नारद इनसे कभी भेंट नहीं करेगा, और वन में जाती भी नहीं है तो घर में रहती हैं, तो वहां नारद आकर के इनको थोड़े फोड़ेगा, भांगेगा। तो इस तरह से दक्ष प्रजापति ने पुत्रियां उत्पन्न किया, और यही पुत्रियां सारे विश्व में जितने प्राणी हैं, जोनियां हैं, सब में जन्म दिया है इन्होंने, सबको उत्पन्न किया है। धन्य हैं प्रजापति दक्ष की पुत्रियां। इनका सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इनके बारे में कि मातृणाम संकराणि च, नाम धेयानी अमूषाम नाम धेयानी मातृणाम संकराणि च, ये सारे जगत की माताएं हैं, माता बनेंगी, बन चुकी हैं हम लोगों के समय सब, ये सारे जगत को उत्पन्न की हैं, और इनका नाम ही संकराणी शुभ करने वाला है, मंगल करने वाला है, कोई इन पुत्रियों का नाम ले, अदितिर, दितिर, दनुर, काष्ठा, सुरसा, इला इत्यादि, तो केवल नाम लेने से ही मनुष्य का मंगल होता है। इतनी पवित्र लड़कियां हैं जो सबकी मां हैं, देवताओं की मां हैं, दैत्यों की मां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सबकी मां हैं, बहुत पवित्र हैं ये, इनका नाम पवित्र है, इनका कर्म बहुत पवित्र है। इस 60 पुत्रियों से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। किस किस पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ इसी अध्याय में सब वर्णन किया गया है। 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से हुआ और 13 का विवाह कश्यप जी से हुआ, जिनमें अदिति जी सबसे श्रेष्ठ, और 4 कन्याओं का विवाह कश्यप जी से हुआ, जैसे सुपर्णा, कद्रु, विनता। सुपर्णा विनता को ही कहते हैं। 4 पुत्रियां और, मतलब 13 और 4, 17 पुत्रियों का, 17 है ना, 17 पुत्रियों का विवाह कश्यप जी से हुआ, 10 का विवाह धर्म से हुआ, और चंद्रमा के साथ इंदु के साथ विवाह हुआ 27 का, परंतु दक्ष चंद्रमा से कोई संतान नहीं हुआ, ये पुत्रियां बिना संतान के ही रह गईं 27। और अंगिरा, कृषास और भूत, इनको 2-2 कन्याएं ब्याही गई थी, कितनी हुई 60। इस तरह से विवाह हुआ। तो किससे कौन उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ये सब बातें सुखदेव गोस्वामी जी बताते जाते, वो पढ़कर नहीं बता रहे थे महाराज परीक्षित की सभा में सब तो त्रिकालदर्शी हैं, संतान आदि का वर्णन करते जा रहे थे। इसी वंश में, मतलब दक्ष प्रजापति के पुत्रियों के वंश में मरुदगण हुए माता दिति के गर्भ से, और अंत में अदिति के संतान को गिनाएंगे, क्योंकि मधुरेण असमापयत। अदिति के संतान का वर्णन बाद में करेंगे 18वें अध्याय में। बीच में और बृहस्पति जी का अपमान किया इंद्र ने, तो फिर विश्वरूप उत्पन्न हुए कौन कौन, फिर नारायण कवच इत्यादि, फिर वृत्रासुर वध की कथा होते होते 17 अध्याय लग जाता है, 17वां अध्याय। 18वें अध्याय में दीति और अदिति के संतान का वर्णन किया गया। तो दीति के पुत्र हुए 49 मरुदगण जो इंद्र के भाई बने, और माता अदिति के अनेक पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े विवस्वान हैं, विवस्वान और इंद्र इनके पुत्र हैं। 12वें पुत्र हुए भगवान वामन देव। तो इन 12 पुत्रों को आदित्य कहा जाता है, अदिति का पुत्र होने से इनको आदित्य कहते हैं। विवस्वान यही सूर्य लोक के मालिक हैं इस समय, और यह कहा भी जाता है वैवस्वत बलवंतर, इनके पुत्र हुए हैं सत्यव्रत महाराज। तो सत्यव्रत महाराज इस समय वर्तमान काल में मनु हैं, इसीलिए वैवस्वत मनु कहा जाता है, वैवस्वत मनवंतर। तो विवस्वान के पुत्र सत्यव्रत महाराज जो मनु हैं, और विवस्वान स्वयं ही सूर्य लोक के स्वामी हैं, इसलिए विवस्वान का अर्थ कभी कभी सूर्य भी किया जाता है, सूर्य लोक के स्वामी हैं। इस तरह से माता अदिति की संतान को गिनाया गया है, जिसमें अंत में भगवान आते हैं, जिन्होंने बलि महाराज से छल किया, 3 पग भूमि मांगने के बहाने 3 लोक ले लिया, उनकी कथा यहां पर पूरी की गई 2 साल में मीरा रोड में। 1 साल में यह बताया गया कि भगवान ने किस तरह माता अदिति के यहां उतार लिया, और दूसरे वर्ष यह कथा कही गई थी कि भगवान किस प्रकार बलि महाराज के यज्ञ में गए और उनसे दान मांगे, उन्हें बांधे, उन पर कृपा किए, शीतल लोक में भेजे। ये श्रीमद् भागवतम है, प्रत्येक अक्षर भगवान की महिमा बता रहा है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।